آیت 14، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بہت بڑا حصہ فراموش کر دیا. ذرا آپ نوٹ کیجئے، ان کو کہا تو انہوں نے بھی فراموش کر دیا. تو آج امت مسلمہ کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں اب ہم آپ خود دیکھ لیں. ہمیں شروع میں کہہ دیا تعفو بالخود، تو آج امت مسلمہ بھی کچھ یہی حالات ہیں اس کے. کون سا حصہ فراموش کر دیا؟ جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا. نوٹ کر لیجئے اس آیت پہ، جو قومیں اپنی کتاب پہ عمل چھوڑتی ہیں وہ فرقوں میں بٹ جاتی ہیں، گروہوں میں بٹ جاتی ہیں، اور مسلمان کی مسلمان سے محبت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. اور آپ ان ساری چیزوں کے اندر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کردار ادا کیا. تو اگر آپ ان ساری آیتوں کو پڑھنے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کون تھے جنہوں نے حلال اور حرام کا علم دیا؟ محبت سے کہیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حلال اور حرام کا علم دینے والے دکھتے ہیں. اگر وہ نہ بتاتے ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اور ہم وہ غلط چیزیں استعمال کر لیتے تو ہمارا نقصان ہوتا بعد میں. جیسے آپ کوئی غلط چیز کھانے لگے اور ایک دم کوئی آ کے روک لے، یہ نہ کھائیے گا، دیکھیں اس میں یہ چیز ہے، وہ یہ ایکسپائر ہے، تو آپ شکریہ ادا کریں گے نا. آپ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت کو محسوس کرتے ہوئے اگلی آیت، جو کہ ہماری سراج منیرہ سے متعلق آیت ہے، اس کو دیکھیں گے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. ایسی آیتوں پہ یہود کو غصہ آتا تھا، یہ بھی بتا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے غصے اور حسد کی وجہ آیت نمبر 15 آپ کے سامنے ہے. اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضاء رب کے در پہ ہوں سلامتی کی رحمت لاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے. چوبنے کو دل کرتا ہے قرآن کو، ان آیتوں کو پڑھ کے، اس قرآن کو جس کو ہم نے ہلکا جانا، صرف ثواب کی بات سمجھی. اللہ نے اس میں کتنی باتیں کہہ دیں کہ جو اس قرآن پہ عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جائے گا. اور کیوں نہ کہیں محبت سے اللہم صلی علی محمد، کہ جس نبی کے ذریعے سے یہ قرآن ہمیں ملا، تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اندھیروں میں روشنی کا چراغ تھے. آپ نے اپنی جان پہ مشکلات سہلی، دیکھیں نا مکہ میں کتنا ٹارچر تھا، آپ کے پیارے ساتھیوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، 3 سال تک آپ شاب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بند رہے. مزہ کرتے، سب چھوڑ دو، آج آپ سب چھوڑ دیں سب آپ سے خوش ہو جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آج آپ سب چھوڑ دیں سب آپ سے خوش ہو جائیں گے. برا بندہ کب بنتا ہے؟ جب دوسروں کو برائیوں پہ ٹوکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے. آپ بھی بڑی فیوریٹ موم بن جائیں گی جب آپ بیٹی کو بیٹا آپ کا جو دل کرے پہن لیجیے، اٹس اوکے. بیٹا آپ کا جو دل کرتا ہے جس لڑکی کے ساتھ چاہیں گھومیں پھریں، کہیں گے کتنی لبرل موم ہے. آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہہ دیں بیگم آپ جو مرضی کریں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، سب خوش ہو جائیں گے. لیکن کیا اپنی جان بچانی ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہاں دیکھیں لفظ کفر ہے ان لوگوں کے لیے جن کا یہ عقیدہ ہے. کیا؟ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. تو عیسیٰ گاڈ کہنا، عیسیٰ کو اللہ کہنا کفر ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ روح زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اور اس کے برعکس وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، خوش فہمیاں دیکھیے گا ذرا، یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں. آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. क्या बता दिया अल्लाह ताला ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीदा दिया उसमें सच्चाई थी, और यहूद और नसारा खुशफहमियों का शिकार हो गए। ये जो लफ्ज़ है ना, बनाउल्ला और अहिब्बा, चहीते, लाडले, फेवरेट्स, तो वे जो लाडले होते हैं फिर उनको सजाएं तो नहीं दी जाती ना। आज आप देखिए उम्मत मुस्लिमा के जुमले नहीं है, ओ हम तो उम्मत मुस्लिमा में से, हम तो जन्नत में ही जाएंगे, मौज करो। यानी एक काफिर शराब पिए तो जहन्नुम में जाए और मुसलमान शराब पिए तो जन्नत में जाएगा, क्योंकि वो उम्मत मुस्लिमा का फर्द है। ये खुशफहमियों की जन्नत है। इससे अल्लाह ने अहले किताब को भी निकाला, यहूद और नसारा, और अब मुसलमानों को भी। इसी पे बताया जा रहा है कि सिर्फ ख्वाहिशों से जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि अब दोबारा देखिए सूरत में बार बार यहूद और नसारा को नबी सल्लम पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है। कैसे? या अहले किताब कद जाकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फतरति मिनर रुसुल, ए अहले किताबिल यकीन, हमारा रसूल तुम्हारे पास रसूलों की आमद के एक वक्फे के बाद आ पहुंचा है, जो तुम्हारे लिए साफ साफ बयान कर रहा है, ताकि तुम्हारी ये बात ना रह जाए कि हमारे पास तो कोई भलाई बुराई सुनाने वाला ही नहीं आया। यानी किसी का आ जाना एक हुज्जत तमाम होता है कि अब कोई आ गया, अब तुम फायदा ले लो। अगर नहीं लोगे, अब अल्लाह के नबी मदीना में आए, जिन्होंने नहीं फायदे लिए वो क्यामत तक के लिए महरूम रह गए। और जो औसो खजरज के लोग आगे बढ़कर आपके अंसारुल्ला बन गए, अल्लाह ने उनके नाम कुरान पाक में महफूज कर दिए। तो क्या पता चला कि एवरी ब्लेसिंग जो होती है उसमें फिर एक लाइबिलिटी भी होती है, एवरी अपॉर्चुनिटी हैज सम लाइबिलिटीज टू। तो इसीलिए फरमाया कि जो आ चुका है तुम उससे फायदा उठा लो। कैसे? जो तुम्हारे लिए साफ साफ बयान कर रहा है, ताकि तुम्हारी ये बात ना रह जाए कि हमारे पास तो कोई भलाई बुराई सुनाने वाला आया ही नहीं। अब देखिए बच्चे माँ बाप की बातों पर चिढ़ते हैं ना, तो उनसे पूछिए कि बेटा अगर हम ना होते, उनको देखिए जिनके माँ बाप नहीं है, बाप नहीं है, माँ नहीं है, अकेले रुल रहे हैं, तो माँ बाप की बातों को बुरा नहीं मनाना चाहिए। कोई सर पे मौजूद है, कोई लीडर है, कोई आपका जिम्मेदार है, शुक्र कीजिए कोई आपको अच्छे बुरे पे टोक रहा है, वरना आपको तो पता ही ना चले। तो इस सोच पे कही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, हम अपने प्यारे नबी के वजूद पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें अच्छे बुरे का फर्क बता दिया। बस अब तो यकीनन खुशखबरी सुनाने वाला और आगाह करने वाला आ पहुंचा, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। क्या पता चला कि रसूलों की तालीमात को सिर्फ चूमना नहीं, चाटना नहीं, कस्में नहीं खानी, उसके तावीज़ बना के गले में नहीं डालने, बल्कि उस पे अमल करने हैं। ये कुरान अमल की किताब थी, हमने वजीफों की किताब बना दी। हदीस जिंदगी का एक लाइफ स्टाइल था, नबी सल्लम के फरामीन हमारे लिए एक मिशले राह थे, हमने उसको किताबों की धूल में छुपा दिया। सुन्नत एक सीरत का रास्ता था, जिस पे चल के अपनी जिंदगियों के नक्शे बनाने थे, हमने उसको रो धो के सिर्फ झूमने झामने और सुनने का जरिया बना दिया। तो लिहाजा अपने अहदों को पूरा करना और रसूलुल्लाह के मिशन को आगे बढ़ाना है इंशाल्लाह। आगे बनी इसराइल को हजरत मूसा के तौर की तरफ लेके जाया जा रहा है। वही क़ाल मूसा लिकौमी ही या कौम इज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम के लोगों अल्लाह ताला के इस एहसान का जिक्र करो कि इसने तुम में से पैगंबर बनाए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो दिया जो तमाम आलम में किसी को नहीं दिया। ऐ मेरी कौम वालों, इस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है, और अपनी पुश्त के बल रुगर्दानी ना करो कि फिर नुकसान में पड़ जाओ। उन्होंने जवाब दिया है मूसा, वहां तो जोर आवर लोग हैं, सरकश किस्म के लोग मौजूद हैं, और जब तक वो वहां से निकल ना जाए हम तो हरगिज वहां ना जाएंगे। हाँ अगर वो वहां से निकल जाए फिर तो हम बखुशी वहां चले जाएंगे। यह आयत 22 का नंबर नोट कीजिए। जिहाद के इनकार पर बनी इसराइल को अल्लाह ने 40 साल तक वादी अती में धक्के दिलवाए। आज उम्मत मुस्लिमा जिहाद का इनकार करके कौन सी सुख चैन की बांसुरी बजा रही है? सिंपल सा हुक्म था फिरौन के डूबते ही कि तुम जाओ कौम मालका से जिहाद करो और अपना बैतुल मकदस वापस ले लो, लेकिन गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। ये एक बात बिल्कुल इन पर फिट आती है। इन्होंने कहा ना ना ना, वो तो बड़े लंबे तड़ंगे, हाँ दुश्मन खुद ही चला जाए तो फिर हम फतह के झंडे ले आएंगे। याद रखिए जिहाद में कौमों की इज्जत है। जो कौम जिहाद को छोड़ेगी उसको अल्लाह ताला दुश्मनों के हाथों में ऐसे कठपुतली बनाएगा कि उनकी मत मारी जाएगी। अल्लाह ने उनकी बात के दौरान कहा कि हर बंदा ऐसा नहीं था कि वो ऐसा ना करते, बल्कि काला रजुलान मिन अल्लज़ीन यखाफून अनअमल्लाहु अलैहिमा, दो शख्सों ने जो खुदा तरस लोगों में से थे, जिन पर अल्लाह ताला का फजल था, कहा कि तुम इनके पास दरवाजे में तो पहुंच जाओ, दरवाजे पर कदम रखते ही यकीनन तुम गालिब आ जाओगे, और अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। ये नोट कीजिए, लीडरशिप क्वालिटी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ एक बड़े बेबाक किस्म के लीडर दिख रहे हैं, कौम का मोरल बुलंद करते हैं। ये बिल्कुल वही अंदाज है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान ओहद में इख्तियार किया था कि लोगों वापस आओ, तो क्या पता चला आज नबी तो नहीं आएंगे। अल्लाह सुबहान तआला ने ऐसे लोग मुकर्रर किए, ऐसे दुआत हैं, ऐसे उस्ताद, ऐसे उलमा जो लोगों को रग़बत दिलाते हैं। हिम्मत तो करो, तुम क्यों अपनी हिम्मत छोड़कर बैठ गए? और ये हिम्मत आती है कुरान समझने के बाद, तदब्बुर करते हैं इन आयात पे और अमल की बातें, मुसलमानों में इख्तलाफात की वजह ढूंढे। आपको कोई दिखी है? मुझे एक वजह समझ आती है, कुरान नहीं पढ़ते, समझ गए, सादा पढ़ते हैं, तजवीद भी कर लेते हैं, हिफ्स भी कर लेते हैं, सही सब कुछ, लेकिन कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। अल्लाह जाने आप सूरत मायदा को कितना को इंजॉय कर रहे हैं, मुश्किल तो नहीं लग रही? खुश है, स्माइल तो दें, बहुत टू मच तो नहीं लग रहा हैवी मील? मुझे लग रहा है कि ये है सूरत जो मुझे पढ़ानी थी, यानी इतनी ये खूबसूरत और दीन का मिजाज समझाने वाली सूरत है। अगर मेरे अपने दिल में ये चीजें ना उतरी हो, मैं आपको कैसे दूं? और मैंने लोगों को जो टूटी फूटी तोड़ते इधर से उधर से करके बातों को पेश करते देखे, उनका कसूर भी कोई नहीं है। अभी पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ाना शुरू कर दिया, अभी थोड़ी सी बात समझे चलो गाड़ी चलाते हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे, कोई दीवार आएगी उसको टक्कर मार के गाड़ी रोक लेंगे। याद रखिए, कुरान आपसे जिंदगी मांगता है। खाना जो खाते हैं ना, वो जिस्म में जाकर 4-6 घंटों में कई मराहल से गुजरते हैं ना, फिर आपको ताकत देता है, एनर्जी मिलती है, उसी से हम सारा दिन चलते फिरते दौड़ते हैं। खाना खाए थोड़ी देर बाद वॉमिट हो जाए तो कमजोरी होती है, क्या हुआ? खाया, हजम नहीं हुआ। वो लोग जो बस कुरान पढ़ा और आगे जाके दूसरों को सुनाने शुरू करते हैं, वो वॉमिट कर देते हैं कई दफा, क्योंकि अभी उनके जिस्म में, उनके रंग ढंग में, उनके अपने हाल होलिये में, उनके अपने अमल में और उनके अपने अफकार ही नहीं अभी क्लियर हुए। और कुरान कम अज कम 5-10 दफा पूरा समझे ना, फिर समझ आता है। ये भी मैं आपको बता दूं, तर्जुमा तो इसका बड़ी जल्दी याद हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि जितना पढ़े लगता है भूल रहे हैं, लेकिन दूसरी दफा पढ़ते हैं तो याद होता है माशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह कुरान की तफसीर एक साल में, एक ही दफा में नहीं आती समझ, जिंदगियां लगा दी लोगों ने। अभी हजरत उमर कहा करते थे, सारा कुछ सीख सिखा के इल्मुल फराइज का इल्म लिया, और सबसे ज्यादा उनको मारूफ थे कि उनके पास विरासत का उल्म है, यही जो विरासत के काम है। एक औरत आई, मसला पूछा, हजरत उमर को वही मसला नहीं था, यानी जो ये समझ रहे थे कि मुझे सारा इल्म आ गया, उनको पहला ही मसला ना समझ आया, तो आप और मैं किसी के बारे में क्या कह सकते हैं? तो लिहाजा कुरान को आम कीजिए, तौबा करें और अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने की दुआएं करें। जिंदगी में आसानी के लिए अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों का इरादा कीजिए, यकीन करिए इससे सादी और खूबसूरत जिंदगी किसी की नहीं जो अपनी जिंदगी कुरान के लिए डिवोट कर दे। रहनुमाई के नुक्ते, कौमों की सजा फिरकों और गिरोहों में बट जाना है, यानी ये सजा है फिरके जमात ने, गिरोह उसके खिलाफ उसके खिलाफ, छोटी छोटी टोलियां हैं, पूरा इस्लाम कमी लोगों के पास है। हिदायत के तालिब को अल्लाह की रजा वाले काम करने चाहिए, सिर्फ दावों और तमन्नाओं से जन्नत और अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं होती, अपने दावों को अमल की दलील देना है। और गौर व फिक्र की चंद बातें, दीन का वाजिब हुक्म छोड़ना और इसके सबब दुश्मनी और सख्त नफरत दोनों हराम है। आप नहीं छोड़ सकते, मैं नहीं छोड़ सकती, मेरे आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। आप कोई गवर्नमेंट का पेपर फिल करें, कोई एक जगह खाली हो, वो आपका फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप एक पासवर्ड का नंबर गलत डाल दें, आपका नेट कंपनेक्ट नहीं होगा। तो लिहाजा पूरे के पूरे दीन को लेना है इंशाल्लाह। हमने इसी तरह से हक का जानना और इस पर अमल करना सुबुल सलाम है। अल्लाह आपको मुझे जिस सुबुल सलाम की दावत देते हैं वो यही है। हमारे पास एक कोर्स भी है व्हाट्सएप पे, सेल्फ बेस्ड कोर्स है कि आप अपनी सहूलत से करते जाएं, उसका नाम सुबुल सलाम है, कि चलो सबीलुल जन्ना नहीं कर पाए तो सुबुल सलाम कर लो, लेकिन जन्नत के रस्तों की तरफ गिरते पड़ते जाएंगे, हो सकता है अल्लाह ताला को हमारी कोई अदा पसंद आ जाए। इसी तरह अल्लाह ताला दुश्मन के दिल में मोमिन का रोब डाल देता है। इसके बाद आयत नंबर 24 से आगे दोबारा बनी इसराइल और हजरत मूसा का किस्सा। कालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा, कौम ने जवाब दिया कि मूसा जब तक वो वहां हैं तब तक हम हरगिज ना जाएंगे, इसलिए तुम और तुम्हारा रब जाकर दोनों ही लड़ भिड़ लो, हम यहीं बैठे हैं। हाईलाइट करिए शायद को, फजहब अंत व रब्बुका, तू और तेरा रब जाए, फकातिला तुम दोनों लड़ लो, इन्ना हा हुना कायदो, हम तो इधर बैठे हैं। क्या आप जुबाने हाल से उम्मत मुस्लिमा का ये हाल नहीं है? जो काम है अल्लाह खुद ही कर ले, अल्लाह कर देगा जी, हो जाएगा जी अल्लाह का। हम क्या, हम बैठे हैं, हम खाने पका रहे हैं, हम बच्चों की शादियों के प्लानर बना रहे हैं, हमें फेशियल कराना है, अभी हमारी मेहंदी की प्लेटें सजनी है, हमारे ये करने, अभी घर बनना, अभी कोठियां बननी, सारे प्लान ख्वाब अपने, इन्ना हा हुना कायदन, वक्त ही नहीं। क्यों वक्त नहीं मिलता? आप सोचिए, हजारों लाखों लोगों को क्यों दीन के लिए वक्त नहीं मिल रहा? यही करना, वो अपनी जाती जिंदगी में खो गए। और जो जरा दीन का काम करे उसके बारे में कहते हैं हाँ नहीं वो अच्छा ही कर रहे हैं, तो आप भी कर ले, नहीं हमारे पास तो वक्त नहीं। तारीफें बड़ी करते हैं, गुण भी बड़े गाते हैं, खुद कम करते हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम ये ना कहें कि फर्ज बनता व रब्बू का फकातिला, बल्कि हम अपना हिस्सा डालें, अपने हिस्से से काम कीजिए, फिर अल्लाह ताला थोड़ा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा भी करवा लेगा। आप लोग आ रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहा है इधर आना? बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा। आज आना छोड़े, कल आपको आना मुश्किल लग जाएगा। तो काम जो करें ज्यादा करेंगे तो अल्लाह करेगा तो और भी इंशाल्लाह आसान होगा। काल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे इलाही मुझे तो सिवाय अपने और मेरे भाई के किसी और पर कोई इख्तियार नहीं। ये भी एक दर्द की बात है कि बंदा अपनी जान या अपने किसी एक आधे प्यारे के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकता कि वो ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अक्सर लोग ढीले हो जाते हैं, थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं। खैर क्या कहा, बस तू हम में और इन नाफरमानों में जुदाई कर दे, ये है असल बात। इरशाद हुआ, अब जमीन इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई, ये खाना बदोश इधर उधर सरगर्दां फिरते रहेंगे, इसलिए तुम इन फासिकों के बारे में गमगीन ना होना। क्या पता चला कि जब लोग आपकी बात ना माने तो फिर आप अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को और मजबूत कर लें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह तो हमें ही तौफीक दे दे कि हम ही ये काम करते रहें। और आप देखिए कि बनी इसराइल के ये किस्से पढ़ने के दौरान आपको कोई भी मेरा नहीं ख्याल बात समझ ना आई हो। कौमों का एक ही मिजाज होता है, एक ही बिगाड़ है उनका। अब आगे है जी किस्सा जिसमें इस कौम की तारीख छुपी हुई है, और वह कत्ल वारत। यहूद के मजहब में कत्ल आम था, गाजर मूली की तरह अंबिया कराम को और नेक लोगों को कत्ल करते थे। अल्लाह ताला ने इन्हीं के तनाजर में अब आगे दुनिया में होने वाले पहले कत्ल का किस्सा सुनाया। ये रब देखिए इन दोनों आयतों में जुड़ गया कि बनी इसराइल के किस्सों में कत्ल का किस्सा आकर बता दिया। पहला कत्ल जिसने किया उसको क्यामत तक के हर कत्ल का गुनाह मिलेगा। वतलु अलैहि नबअ बनी आदम बिलहक इज़ क़र्रबा कुर्बाना, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। इन दोनों ने एक नजराना पेश किया, इनमें से एक की नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई, तो कहने लगा मैं तुझे मार ही डालूंगा। इसने कहा, ये जुमला भी काबिले गौर है, नोट करिए, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला तो तकवा वालों का ही कबूल करता है अमल। सुबहान अल्लाह, अल्लाह हमें तकवा भी दे फिर कबूलियत भी दे। और यहाँ आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह नेस्त हो गया। दुआ करिए अल्लाह का अमल कर पा रहा है तो कबूल भी कराना और तकवा देना, ताकि हमारी कुर्बानियाँ और दूसरी चीज़ें भी कबूल हो जाएं। आगे किस्सा बढ़ता है, लैं बसत्ता इलैया यदक लितक्तुलनी मा अना बिबासित यदैया इलैक लियक्तुलक, गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्त राजी करे लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज अपने हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगारे आलम से खौफ खाता हूँ। हाबील के इस जुमले को अपनी जिंदगी की मिशलेरा बना लीजिए। कोई आप पे ज्यादती करे, आप कहना कर लो और भी कर लो और भी कर लो, मैं नहीं आगे से बोलूंगा, मैं नहीं आगे ज्यादती करूंगा, तुमने मुझे ये कहा मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा। क्यों? कि मेरा अजर तो और मेरा मामला तो मेरे रब पे है। और दूसरी वजह क्या दी आयत 29 में, इन्नी उरीद अन तबू अब इस्मी व इस्मिक, मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा और अपना गुना अपने सर पर रख ले और दोस्तियों में शामिल हो जाए, जालिमों का यही बदला है। खैर अब हाबील के बाद काबील की बात क्या हुई, फतवत लहू नफसुहू, بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس کہ میں اس طرح کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ نوٹ کیا آپ نے کہ ہائے کوے جیسا نہیں ہو اور اپنے بھائی جیسا نہیں ہونا چاہ رہا کہ جس نے اسے بدلہ نہیں لیا۔ کیا پتہ چلا کہ انسان ہمیشہ اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ وجہ کیا تھی اس پورے قصے میں؟ حسد، حسد اور حسد۔ پہلے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ کہیں میں بھی کسی سے حسد تو نہیں کرتی، دل سے نکال دیں اللہ میرے دل سے سب کا حسد نکال دیں۔ وہ عمر بن العاص کو اپنے جو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی کہ اس جگہ سے جو گزرے گا وہ جنتی ہے، 3 دن تک وہی وہاں سے گزرتے رہے، اور جب صحابی نے جا کر ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسی بات کہی، کہا میرا کوئی عمل تو نہیں، ہاں میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں حسد نہیں رکھتا، کوئی رکاوٹ نہیں رکھتا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا کر دے، کیونکہ حسد وہ تیزاب ہے جو اسی برتن کو کھا جاتا ہے جس میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ ایک بے گناہ شخص کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے، کسی کی جان بچانا بھی گویا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ ایک برائی دوسری برائی کو آسان کر دیتی ہے۔ اس سارے قصے میں سے آپ کو مجھے عمل کے بہت سارے نقطے نکلے، لیکن جو سب سے بڑی چیز اب اس سے آگے ہے، جو آیت میں بھی شروع کرنے لگی ہوں، اس کے نمبر کے ساتھ نوٹ کیجئے، آیت نمبر 33، ڈکیتی کی سزا ہے، آیت محاربہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ منہ کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی ان کے ملک سے نکال دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ ڈکیتی کی اگر یہ سزا دنیا میں رائج ہو جائے تو سب بڑے بڑے ڈاکے ختم ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کیسے برملا آ کر گن پوائنٹ پہ گھر سے چیزیں بھی لے جاتے ہیں اور گھر والوں کو بھی باندھ جاتے ہیں۔ آج ہم نے ان سزاؤں کو امپلیمنٹ نہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، لیکن ان سزاؤں کو امپلیمنٹ کرنے یا ان کو لاگو کرنے سے پہلے عدل قائم ہوگا، عدل کرنے سے پہلے قرآن عام ہوگا۔ یہ جو قرآن سے جہاد شروع ہوتا ہے نا، یہی اینڈ پہ جا کر اسلامی شریعت کے نفاذ پہ آتا ہے۔ پہلے آپ قرآن پڑھتی ہیں نا، آپ کا دل کرتا ہے کچھ سیکھوں، پھر آپ 5-6 فٹ کے اس جسم پہ سوچتی ہیں میں کیسے کپڑے پہنوں، میری نماز کیسی ہو، تو گویا کہ آپ کے اس وجود پہ اسلام نافذ ہو گیا۔ پھر آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے، گھر والوں کے بعد گلی محلے والے، اس طرح شریعت نافذ ہوتی ہے۔ شریعت راتوں رات نافذ ہونے والی نہیں، پھر مذاق بھی تو بنتی ہے نا شریعت۔ کوئی کتنا مرضی نعرہ لگا دے اسلامی ریاست بنے گی، مدینہ بنائیں گے، لیکن وہاں سارے چور ڈاکو بیٹھے ہوں تو وہ کیسے بنانے دیں گے؟ وہ سب سے پہلے آپ کی مخالفت کریں گے۔ تو آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اس کا آگے جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کفار کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اس کی مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں، تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جی خوبصورت بات، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ وسیلہ انسان کے اپنے اچھے اعمال ہیں، آپ کی نماز، آپ کا عقیدہ۔ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ربنا اننا آمنا بھی، अपने ईमान को वसीला बनाया। गार में फंसे हुए 3 लोगों ने अपने अच्छे अमाल याद किए थे तो गार में से रास्ता बन गया ना। तो बेहतरीन वसीले क्या है कि इंसान अपने आप को पेश करे, अपना अमल, अपनी नेकियां, फिर अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, फिर इसी तरह अल्लाह के रस्तों में जिहाद होगा, फिर आप देखेंगे कि एक एक करके इंसान में खैर ही खैर बढ़ती जाएगी। तो तदब्बुर और अमल के नुक्ते देखते हैं, कुरान पाक के किस्सों से इबरत हासिल करना, जैसे किस्सा है हाबील और काबिल से हम इस वक्त ले रहे हैं, अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करके इसका कुर्ब हासिल करना, कत्ले नाहक और दूसरे कबीरा गुनाहों से बचना है और दूसरों को भी नसीहत करनी है। कुरानी रहनुमाई, कत्ले नाहक पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसीलिए डॉक्टरी का पेशा बड़ा मुअज्जज समझा जाता है कि वो किसी की जान को बचाते हैं। फिर इसी तरह आमाले सालेह का कबूल होना अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। बनी इसराइल में बिगाड़ की वजह ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी थी, हमने अपना जायजा लेना। फिर गौर व फिक्र की चंद बातें, सिर्फ ईमान का दावा करके सादत और कामरानी का ख्वाहिशमंद होना बेवकूफ़ी है, क्योंकि दावे दलील मांगते हैं और ईमान की दलील अमल सालेह है। गुनाहों की सजा मुख्तलिफ शक्लों और किस्मों में मिलती है, और एक आम किस्म जिसको हम नहीं जानते वो क्या आपको पता? एक शागिर्द ने उस्ताद से कहा, आप कहते रहते हैं, अब तो कहते ही रहते हैं गुनाह करोगे सजा मिलेगी, गुनाह करोगे सजा मिलेगी, मुझे तो नहीं मिलती, मैं गुनाह भी करता हूँ मुझे सजा तो नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि ये तेरे दिल की सख्ती और नेकी की तौफीक छिनना, इससे बड़ी और सजा क्या होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कत्लो खून रेजी अल्लाह के गजब को दावत देती है। अल्लाह तआला की जमीन पर इस्लाह और जिहाद अफसल तरीन आमाल हैं। अगर इम्तिहान और आजमाइश ना होती तो सारे लोग ईमान वाले होते। ये इम्तिहानों में तो पता चलता है कौन अगली क्लास में जाएगा कौन नहीं, तो आजमाइशों के पर्चों से निकल कर ही अगले दर्जे मिलते हैं। इम्तिहान के वक्त कुछ लोग अपने कायद को छोड़कर भाग जाते हैं, और कुछ ना सिर्फ ये कि इनकी मदद करते हैं बल्कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, जैसे प्यारे सहाबा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में किया। तो कही अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। कातिल का नफ्स कत्ल को हल्का और मामूली बना देता है कि करने की हिम्मत पैदा हो, और इसके लिए रास्ता हमवार कर देता है, वरना ये अमल बहुत मुश्किल है। देखिए किसी का खून बहता देखना क्या ये आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कैसे हिम्मत खुलती है और इंसान दूसरे को कत्ल कर देता है? अल्लाह ताला कत्लो गारत गरी से सबको बचा दे। अब आगे चोरी की सजा की तरफ बात जा रही है, आयत 37 में जहन्नम में इनकी सजा क्या होगी? युरीदून यखरुजू मिनन नारी वमा हुम बिखारिजीन मिनहा। ये चाहेंगे कि वो दोजख में से निकल जाएं, लेकिन ये हरगिज इसमें से ना निकल सकेंगे, इनके लिए दायमी अजाब है। अब चोरी की सजा, हाथ काटना, वेस्ट में इसको बहुत उछालते हैं कुछ लोग और इस तरह की कहानियां करते हैं। जरा सा हकीकत हाल सुनिए। बस सारी को बस सारे कत फक्ता वही दिया हूँ माजम बीमा कसबा नकाल मिन अल्लाह वल्लाहु अजीजुन हकीम। चोरी करने वाले मर्द और औरत का हाथ काट दिया करो। या नोट कीजिए, मर्द का जिक्र पहले आया, क्योंकि किफालत और कमाने का जिम्मा मर्द के और जिम्मे, जबकि सूरत नूर में जिना की सजा आएगी तो वह जानिया तो पहले और जानी बाद में, क्योंकि इज्जत और इस्मत की हिफाजत औरत का फर्ज है। ये बदला है इसका जो उन्होंने किया, अजाब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला कुव्वत और हिकमत वाला है। जो शख्स तौबा कर ले और इसलाह कर ले तो अल्लाह ताला रहमत के साथ इसकी तरफ लौटता है। यकीनन अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला, मेहरबानी करने वाला है। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ही के लिए जमीन और आसमान की बादशाहत है? जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे मुआफ़ करे। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी उसकी मखलूक है वो जिसके साथ जो मामला करे। अब यहाँ देखिए कि चोरी की सजा बहुत सख्त लग रही है। आपको पता है कि हाथ काटा जाता है, फिर उसको जलते हुए तेल में डाला जाता है, और ये अमल सबके सामने करने का हुक्म है ताकि दूसरों को इबरत आए। लेकिन क्या ये सजा एकदम लग जाएगी? लोगों को झूठ सच का नहीं फर्क पता, गुर्बत खत्म नहीं हो रही। हजरत उमर के दौर में ये सजा क्यों मौकूफ हुई थी? जब कहत पड़ा था तो पहले अदल होगा, 5वां पारा जहन में ले आइए, फिर इंसाफ होगा। पहले जुल्म का कला कमा करेंगे, फिर शरीयत नाफिज होगी, और जो कुछ भी हो रहा है उन सब के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लम की तलब और तड़प और आपकी जो दिल की कैफियत थी उसका तस्करा आगे है।